पिंकेश कुमार की आवाज़ में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के सिद्धांत चैप्टर व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म। आत्मरक्षा ही एकमात्र ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए मानव जाति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने में से किसी एक की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। दूसरे की संभावित हानि को रोकना ही एकमात्र ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए सभ्य समाज में किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उसका अपना हित शारीरिक अथवा नैतिक पर्याप्त आधार नहीं है, उसके ऊपर अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण संप्रभु है। जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन। व्यक्तिवाद व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध तथा राज्य का कार्य क्षेत्र राजनीतिक विज्ञान के सबसे अधिक विवादग्रस्त विषय रहे हैं, और इस संबंध में जिन विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है उनमें व्यक्तिवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। व्यक्तिवाद 18वीं सदी से मध्य से 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक यूरोप की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा। व्यक्ति के महत्व पर आश्रित इस विचारधारा में व्यक्ति समाज और राज्य के लिए नहीं वरन समाज और राज्य व्यक्ति के लिए हैं का विचार प्रतिपादित किया, और आदर्शवादियों के सर्वाधिकारवादी राज्य में उपेक्षित व्यक्ति की गौरव गरिमा को समाज में फिर से प्रतिष्ठित किया। लेखक ने व्यक्तिवाद के संबंध में कहा है, व्यक्तिवादी विचारधारा की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि शासन का एकमात्र कर्तव्य हिंसा और छल से व्यक्ति की रक्षा करना है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप, चाहे वह स्वयं उसके लाभ के लिए ही हो, वांछनीय नहीं है। राज्य के द्वारा आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेने या नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों पर व्यक्तियों को हिंसा या छल से बचाने के अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने को भी औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। व्यक्तिवाद का फ्रांसीसी शब्द लासाफेयर, जिसे अंग्रेजी में लेट एलोन मुझे अकेला छोड़ दो कह सकते हैं, व्यक्तिवाद के अर्थ को अधिक अच्छे प्रकार से स्पष्ट करता है। इसका अर्थ है राज्य और सरकार व्यक्ति को स्वयं उन्नति के लिए अकेला छोड़ दें। व्यक्तिवाद का विकास। गार्नर के अनुसार व्यक्तिवाद की उत्पत्ति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में अतिशासन के दोषों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। यूनानी विचारक राज्य को एक नैतिक पुरुष के रूप में स्वीकार कर लेने की बात कहते हैं, और मध्य युग में भी लगभग इसी प्रकार की विचारधारा प्रचलित थी। 16वीं शताब्दी सदी में यूरोप निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। हॉब्स, रूसो, हीगल, बोसांग के द्वारा इसी समय उग्र विचारधारी का प्रतिपादन करके व्यवहार में भी कुछ सरकारें इस समय निरंकुश और अमर्यादित हो गई थी। आशीर्वादम के शब्दों में, उनके अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशेष प्रकार के भोजन निर्धारित करते थे और समों को दफनाने के लिए विशेष प्रकार के कपड़ों की आज्ञा देते थे। इन सर्वाधिकारवादिता के प्रतिक्रिया स्वरूप 18 शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद उद्यमी प्रतिभा संपन्न और साहसी व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु राज्य के अनुचित हस्तक्षेप की मांग की। एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, मिल, स्पेंसर आदि विचारकों का समर्थन हमारे सामने व्यक्तिवादी विचारधारा के रूप में आया। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्तिवाद 18वीं और 19वीं सदी का वह महत्वपूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन और दर्शन है जो यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, जो राज्य को मानव की अपूर्णता का प्रतीक कहकर उसकी निंदा करता है, और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता का समर्थन करके राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहता है। व्यक्तिवादी विचारक कोमे से क्वेस्ने, रिकार्डो, माल्थस, टॉकविल, बेंथम, हम्बोल्ट, लॉक, फर्गुसन, मिल, स्पेंसर, ब्रूस स्मिथ, डेनिसमोर्ट, समनर आदि प्रमुख हैं। यद्यपि इनके राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन और राजनीतिक हस्तक्षेप का खंडन क्या है, परंतु विभिन्न परिस्थितियों में प्रभाव के कारण इन्होंने अपने भिन्न भिन्न तर्क उपस्थित किए हैं। इन सभी में मिल और स्पेंसर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। स्टुअर्ट मिल 1806 से 1876। मानवीय स्वतंत्रता के उपासकों में मिल का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, और उसकी गणना मिल्टन और वोल्टेयर के साथ होती है। अपने स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति अपनी अमर कृति स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी में की है, जिसकी तुलना मिल्टन की एरोपेजिटिका से की जा सकती है। इस पुस्तक में मिल्टन ने व्यक्ति स्वतंत्र के दो पहलुओं पर बल दिया है, पहला विचार स्वतंत्र और दूसरा कार्य स्वतंत्र। विचार स्वतंत्र, मिल विचार की स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था, और उसका मूलभूत विचार था कि सत्य को हम तर्क वितर्क द्वारा ही जान सकते हैं, और इस संघर्ष में हमेशा सत्य की विजय होती है। इसलिए व्यक्ति को विचारधारा पर राज्य द्वारा कोई बंधन नहीं होना चाहिए। विचार का दमन करना सत्य का दमन करना है, क्योंकि यह सही नहीं है कि समान स्वीकृत विचार ही सत्य हो। मिल के अनुसार व्यक्ति का विचार सत्य हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, या आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से मिथ्या हो सकता है। इसे यदि सत्य को रोका जाता है तो समाज और अधिकारी वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते हैं, यदि वह मिथ्या है तो उस पर भी रोक लगाना उचित नहीं है, क्योंकि सत्य मत मिथ्या मत का अंत कर देगा, जिससे मिथ्या मत रखने वाला भी सच्चाई से परिचित होगा और सत्य अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। अधिकारी वर्ग यह दावा करते हैं कि वे समाज को हानि पहुंचाने वाले मतों को रोककर जनता की भलाई कर रहे हैं, यह उचित नहीं है, क्योंकि जनता स्वयं मिथ्या मत को नहीं मानेगी। कोई विचार केवल आंशिक रूप से सत्य है तो भी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ सत्य तो है। सत्य के हम नित्य विरोधी विचारों के संपर्क में लाकर ही जीवित रह सकते हैं, क्योंकि सत्य विवाद के किसी एक पक्ष की बबौती नहीं है। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और विभिन्न पक्ष परस्पर विरोधी नहीं पूरक होते हैं। वास्तव में सभी पक्षों से देखने पर ही हम पूर्ण रूप से सत्य को समझ सकते हैं। मिल ने सभी सामान्य व्यक्तियों को नहीं परंतु सनकी व्यक्तियों को विचार की स्वतंत्रता दी जाती है। उनका कहना है कि एक जमाने में सनकी समझा जाने वाला व्यक्ति आज विद्वान समझा जाता है। सुकरात और ईसा मसीह अपने जमाने में सनकी थे, लेकिन आज हमारी दृष्टि में पूज्य हैं। मिल का कहना है 10 सनकी व्यक्तियों में से 2 निरर्थक बुद्ध हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है जितने अपने साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा न केवल रात के हस्तक्षेप से बल्कि अहिंसक समाज के दबाव से भी करने को प्रयत्नशील है। वह बहुमत और प्रतिवाद परंपराओं के दबाव को भी नहीं मानता। सेवाइन का मतलब है, मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है और विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह से दृष्टि देखता है और अपने संख्या की जोर से उन्हें दबा देना चाहता है। मिल के अनुसार बहुमत सदैव ठीक नहीं होता, अतः अल्पमत का दमन नहीं किया जाना चाहिए। मिल कहता है कि शासन को किसी प्रकार के विचार का दमन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, चाहे उसे जनता का समर्थन प्राप्त हो या ना हो। मिल इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ सरकार को भी सबसे बुरी सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। मिल के शब्दों में यह हानिकारक है जबकि शासन इसका प्रयोग जनमत के विरुद्ध करता है, और उस समय इसे भी अधिक हानिकारक है जब इसका प्रयोग जनमत के अनुकूल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानवता एक ही विचार का हो तो मानवता की इस एक व्यक्ति को मौन रखने का उसका इतना अधिकार नहीं हो सकता जितना कि उस एक व्यक्ति को, यदि उसके पास शक्ति हो, संपूर्ण मानवता को मौन रखने का अधिकार हो सकता हो। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बनकर मिलने वास्तव में इंग्लैंड की संस्थात्मक पद्धति और इंग्लैंड के विचार विमर्श में विश्वास को ही मान्यता दी है। कार्य स्वतंत्र, मिल के द्वारा विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। मिल के अनुसार कार्य स्वतंत्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है, यह उसकी आत्मोन्नति का मार्ग है। उसके अनुसार कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और यही व्यक्ति की एवं सामाजिक प्रगति का आवश्यक तत्व है। लेकिन विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्र में अंतर है। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, जिस समाज के अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति के स्वतंत्र विचार की स्वतंत्रता तो निरपेक्ष रूप से प्राप्त हो सकती है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक सीमित होती है जबकि अन्य व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक ना हो। मानव विषयक कार्य को मिल स्विषयक और पर विषयक दो भागों में विभाजित करता है। स्विषयक में वह कार्य आते हैं जिसका व्यक्तिगत संबंध से होता है, व्यक्तिगत जीवन से संबंध होता है, सोना पहनना, खाना, आचार विचार इत्यादि। इनमें मिल व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर है और वो तो यहाँ तक कहता है कि यदि व्यक्ति जुआ खेलता और उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति के रहन सहन के तरीकों, समाज की प्रचलित विधियों की चिंता किए बिना अपने तरीके से कर सकता है, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर विषयक क्षेत्र में जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, ऐसे में मिल कुछ व्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध लगाने पर सहमत होता है। उनका कहना है वह एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मानव जाति को अधिकार प्राप्त है वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके आत्मरक्षा ही है। वह प्रयोजन जिसके लिए सभ्य समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध न्याय रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यही है कि वह औरों को हानि न पहुंचा सके। उसके ही भौतिक या नैतिक हित के लिए नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने व्यक्तित्व के ऊपर मानव संप्रभु है। मिल के अनुसार विविधता से मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए सबके लिए एक समान जीवन नहीं होना चाहिए। मिल व्यक्ति को सामाजिक रीति रिवाज से भी मुक्त करना चाहता है, क्योंकि इससे रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उदय होता है जो कि व्यक्तित्व के व्यक्तिगत विकास के लिए बाधक होता है। मिल व्यक्ति के लिए कार्य स्वतंत्रता का परिवर्तन करता है, लेकिन उसका कहना है कि निम्न परिस्थितियों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। पहला, यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता हुआ अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक हो। दूसरा, जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को भूल जाए। और तीसरा, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का कुछ अंश त्यागने के लिए बाध्य किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को डेविडसन के अनुसार निम्नलिखित तीन संरक्षक के अंतर्गत रख सकते हैं। क, व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए, बौद्धिकता द्वारा इनका पूर्ण रूप से अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। ख, समाज और सामाजिक और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, इससे मानव कल्याण में वृद्धि होगी और लोग अपने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और गो, उन सामाजिक परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए जो मनुष्य के विकास में बाधक हो और जिनसे विचारों के व्यक्ति आचरण की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना और मूल्यांकन। मिल द्वारा विचार व्यक्ति और कार्य की जिस स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया उस पर निम्न आक्षेप होते हैं। पहला, मिल की धारणा का आधारभूत विचार अपने शरीर मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति का संप्रभु होना है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। आज सामाजिक संगठन इतना जटिल हो गया है और व्यक्तियों के समूह ऐसी विषम समस्याएं हैं कि भौतिक, नैतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं में स्वयं उसके अपेक्षा समाज अधिक निर्णायक होता है। व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्णता का विचार सामाजिक जीवन के तत्व से नहीं मेल खाता है। अतिरिक्त प्रतिबंध प्रतिबंध के रूप में बुराई है, किंतु उपयोगिता के आधार पर व्यक्तिगत प्रतिबंध बुराई नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, मिल व्यक्तिगत विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों को भी स्वतंत्र देता देना तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन झक्की और सनकी को समान व्यक्ति की तरह पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब इसके संबंध में आलोचक का विचार है कि विकृत मानसिकता और सनकी में कोई अंतर नहीं होता है और यह समाज के लिए अहितकर होगा सनकियों को भी स्वतंत्रता दी जाए। सर लेस्ली स्टीफन कहा है, सनकी उस व्यक्ति उस प्रकार बेडोल कटे हुए सहतीर के समान है जिसका राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता। मैकेन के अनुसार सनकपन व्यक्तिवाद का प्रहसन है। झक्कियों में सनकियों को सुकरात और ईसा मसीह जैसे दिव्य पुरुषों से तुलना करना महान परिस्थितियों को स्थितियों को समझ नहीं पाना है। तीसरा, मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा बहुत ही दुराग्रहपूर्ण और असंतुलित है और इससे ज्यादा परिणाम क्या हो सकता है कि मिल सनकी व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के पक्ष में है और पिछड़े हुए वर्ग और जातियों के व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित रखता है, इसलिए यह उच्च वर्ग के विशेष अधिकार बनकर रह जाता है। चौथा, मिल का कार्य स्वतंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति स्वविषयक और परविषयक कार्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के कोई ऐसे कार्य नहीं होते हैं जिसका समाज पर प्रभाव कुछ न कुछ न पड़े और इस यह कोई विभाजन कोई संभव नहीं है, क्योंकि जुआ खेलने से उसका परिवार नष्ट होता है फिर भी उसका समाज पे परिस्थिति होगा, इसमें समाज मौन कैसे रह सकता है। मिल इस बात पर बहुत बदल देता है कि किसी व्यक्ति को बिना तर्क या समाज की कोई बात स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जहां तक सारी बातों में तर्क का समावेश किया जाने लगे तो व्यक्ति कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। छठा, मिल राज्य को आवश्यक बुराई मानता है क्योंकि वो कहता है कि मानवीय वातावरण ऐसे स्थिति में वातावरण में विकसित हो सकता है जिसमें बाहरी प्रतिबंध ना हो, जो कि आज के मान्यताओं से मेल नहीं खाता है, क्योंकि आज राज्य एक कल्याणकारी स्वरूप धारण कर चुका है और यह व्यक्ति के विकास में अपना बहुत योगदान देता है। सातवां, इस सब के अंतर्गत मिल की स्वतंत्रता की धारणा निषेधात्मक है और यह नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रवर्तक लगता है। यह नहीं बताता है कि स्वतंत्रता का विचार क्या है और राज्य में कौन सी स्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त मिल के पास स्वतंत्रता का विचार तो है लेकिन अधिकारों का कोई ठोस दर्शन नहीं, और इस के अभाव में अवधारणा मूर्त रूप ग्रहण नहीं होती है। मिल कहता है, प्रतिबंधहीन स्थिति ही स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता को वास्तविक रूप में देना चाहते हैं तो इस संबंध में सकारात्मक दृष्टि से विचार करना होगा। अर्नेस्ट बर्कन मिल की स्वतंत्रता के संबंध में लिखते हैं, मिल उसकी बचत के लिए काफी खुंजाइश छोड़ देने पर भी हमें खुली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का पैगंबर लगता है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उसके पास कोई दर्शन नहीं था जिसके आधार पर स्वतंत्रता की धारणा को यथार्थ रूप प्राप्त होता। वह समाज में ऐसी कोई कल्पना नहीं कर पाया जिसमें राज्य और व्यक्ति का मिथ्यांतर अपने आप लुप्त हो जाता है। मिल का महत्व, फिर भी यह मिल का स्वतंत्रता का दर्शन अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता आज राजनीतिक दर्शन में उसकी कोई समता नहीं है जिसका उसने प्रतिपादन किया। मैक्सी के अनुसार विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में मिल का लेख इस विषय पर संपूर्ण राजनीतिक साहित्य में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ लेखों में से एक है, जिसमें वही उत्कृष्टता प्राप्त किया जो मिल्टन, स्पिनोजा, वाल्टेयर, रूसो, पेन, जेफरसन जैसे विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्य प्रबल समर्थकों को प्राप्त हुई थी। हॉवर्ट स्पेंसर 1820 से 1930। स्पेंसर व्यक्तिवादी दार्शनिक था जिसने वैज्ञानिक विकासवाद पर अपने विचारों की पुष्टि की। उसके चाचा थॉमस स्पेंसर राज्य प्रभुत्व विरोधी थे जिसका स्पेंसर पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह उसके विचार में ही मिल जाता है कि वह प्रारंभ से आज्ञाकारिता सबसे चिट थी और माता पिता का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था। स्पेंसर के राजनीतिक विचार उसके निम्न कृतियों में मिलते हैं। एक है शासन का उचित कार्य क्षेत्र, द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। चौथा व्यक्ति बनाम राज, मेन वर्सेस स्टेट। पांचवा निबंध, विधायकों के पाप, ऐसे सिंस ऑफ लेजिस्लेटर्स। और स्पेंसर के राजनीतिक विचार। स्पेंसर एक जीवशास्त्रीय वैज्ञानिक था और उसके द्वारा सामाजिक समयवता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, लेकिन व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध और कार्यक्षेत्र में उसकी विचारधारा ही व्यक्तिवादी है। सत्ता के विरोध की धारणा वो अपने पूर्वज से प्राप्त की थी और हाजकिस्तान के साथ संपर्क और प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत नहीं से ब्रिटिश बनाया। राज्य विरोधी विचार को जीवन संग्रह और योग्यतम के विजय के सिद्धांत से और योग्यतम के विजय सिद्धांत से और विजय मिला। व्यक्ति एक समाजवादी सामाजिक प्राणी होने के कारण एकाकी होता है और अपने केवल कल्याण और सुख की चिंता करता है, और इस प्रकार से राज्य परस्पर असंबद्ध व्यक्तियों का समूह है। यह राजनीतिक दर्शन का केंद्र था स्पेंसर का। मतलब कि राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो शक्तियों और प्रवृत्तियों के विकास हेतु स्वतंत्रता चाहते हैं, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों से सीमित होती है। इस दृष्टि में स्पेंसर बेंथम और मिल के समीप आ जाता है, लेकिन अन्य दृष्टि से उसकी तुलना उग्र व्यक्तिवादी है। स्पेंसर के लिए स्वतंत्रता न केवल प्राकृतिक अधिकार वरन सर्वोच्च प्राकृतिक अधिकार है, और अन्य प्राकृतिक अधिकार जो प्राप्त होते हैं वो निम्न है। इसलिए स्पेंसर ने प्राकृतिक अधिकार की धारणा को पुनर्जीवित किया जो उग्रवादियों के कारण उपयोगितावादियों के कारण विस्मृत हो गई थी। उसने विकास की धारणा में भी यद्भाव्यम नीति के ही सबल आधार प्राप्त किया है। उसके अनुसार विकास का सर्वाधिक स्पष्ट तथ्य व्यक्तियों के जीवन के लिए संघर्ष रहा है, और संघर्ष में जो सफल रहते हैं वो जीवित रहते हैं, बाकी अयोग्य और असफल नष्ट हो जाते हैं। समाज के द्वारा इस संघर्ष को रोकने अथवा प्रतिबंधित करने और सबल व्यक्तियों के विरुद्ध निर्बल व्यक्तियों की रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य को भी। यदि राज्य के निर्बल व्यक्तियों के पक्ष में हस्तक्षेप किया जाता है तो निर्बल और अक्षम व्यक्तियों से विश्व भर जाएगा और समाज को हानि होगी। इसलिए विकास को प्राकृतिक पूर्णता देने के लिए राज्य को व्यक्ति के मामले में दूर रहना चाहिए और व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। एकमात्र राज्य का उद्देश्य व्यक्तित्व और समाज और राज्य को बनाए रखना है, रक्षा करना है, उसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना चाहिए। स्पेंसर के अनुसार राज्य एक निषेधात्मक निगमात्मक सत्ता है जिसका कार्य राज्य की सुरक्षा को बनाए रखना और व्यक्ति के परस्पर किए गए समझौतों को लागू करना है। राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना, निर्धन की सहायता, स्वास्थ्य और श्रम संबंधी स्थितियों में सुधार आदि कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। स्पेंसर का तात्पर्य यह है कि प्रेम, सहानुभूति, दया और उदारता आदि मानवीय भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। उसका विचार है कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तो इन भावनाओं का महत्व है, लेकिन राज्य के द्वारा इन भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। स्पेंसर राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिक सीमित करने के पक्ष में है और उनके द्वारा राज्य का कार्य मानवीय परस्पर स्वतंत्रता विरोधी है। राज्य का कार्य और मानवीय स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। स्पेंसर का विचार है कि राज्य दुर्गुणों की संतान है जिससे अपना जन्मदाता के तीन अंकित हैं। एक अन्य स्थान पर वह लिखता है, वह यह सत्य हो अथवा न हो कि मनुष्य असमानता का पुतला और उसकी कल्पना पाप में की जाती है, परंतु यह निसंदेह सत्य है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई। स्पेंसर किस सीमा तक राज्य का विरोधी है इसका परिचय सोशल स्टैटिस्टिक्स में उसके विचारों से हो जाता है, कि व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने का, उसके साथ अपने संबंध त्याग देने का, उसकी रक्षा से इनकार करने का अधिकार प्राप्त है, और उसके द्वारा लादे गए भार को त्याग कर स्वेच्छापूर्वक न्याय के क्षेत्र से बाहर रखने का अधिकार है। अपनी रचना व्यक्ति बना राज्य में स्पेंसर शासन की मूर्खता, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का विस्तृत उल्लेख करता है, और निबंध विधायकों के पाप में उसके राज्य द्वारा अतीत में लागू किए गए कार्यों कानूनों की निंदा की है, क्योंकि उनका कहना है कि इन विधायकों ने भूतकाल में पाप किए इसलिए भविष्य में इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसे भी आगे चलकर स्पेंसर अपने राजत्ववादी व्यक्तिवाद के आधार पर इस बात का प्रतिपादन करता है कि हम राज्य अधिकारियों की अपेक्षा सामान्य व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता में ही अधिक विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति में विश्वास किंतु राजसत्ता में अविश्वास व्यक्त करता है। वह संसद के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की निंदा करता है और संबंध में कहता है कि भूतकाल में एक बड़ा राजनीतिक अंधविश्वास था राजाओं का दैवीय अधिकार, आज का बड़ा राजनीतिक अंधविश्वास है संसदों का दैवीय अधिकार। उसके अनुसार संसदों को सीमित सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। स्पेंसर राज को मानवीय जीवन की पूर्णता का प्रतीक मानता है और उसका विचार है कि राज बुराई होते हुए भी इसे विद्यमान है कि मानवीय जीवन में दुष्प्रवृत्तियां हैं। राज्य एक अस्थायी संस्था है, लेकिन उसका अंत उस समय ही संभव हो सकेगा जबकि मानव जीवन की दुष्प्रवृत्तियों का अंत हो जाए। जब मनुष्य समूच सामाजिक और पूर्ण रूप से सभ्य हो जाएंगे तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र। व्यक्तिवाद का दूसरा नाम लासा फेयर भी है, जिसका अर्थ उसे अकेला रहने दो, लेट हिम बी अलोन है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को व्यक्ति को अधिकाधिक अकेला रहने का अवसर देना चाहते हैं। इनका मत था कि मानव श्रेष्ठ स्वभाव से ही होता है, इसलिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। मानवीय स्वभाव और जीवन में विद्यमान स्वार्थ और संघर्ष की प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है। उनके अनुसार राज्य एक बुराई है, परंतु मानवीय प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के कारण यह आवश्यक हो जाता है, इसलिए इसे एक आवश्यक बुराई कहा जा सकता है। राज्य के अस्तित्व को व्यवस्था के कारण स्वीकार किया गया है, इसलिए व्यक्तिवादी चाहता है कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जाए जितना हद तक संभव हो और व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए अधिकाधिक कार्य करे, खुद करे। राज्य के उचित और वैध कार्यों पर एक मत नहीं है, परंतु स्पेंसर राज्य का निम्न कार्य क्षेत्र कहता है: एक, बाहरी आक्रमणों से रक्षा; दूसरा, आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था; तीसरा, चोरी डकैती संपत्ति की रक्षा करना; चौथा, व्यक्तियों द्वारा किए गए वैध समझौतों को लागू करना। किंतु मिल और अन्य व्यक्तिवादी उपयुक्त कार्यों में दो कार्य सम्मिलित करना चाहते हैं: एक है असहाय और असमर्थ व्यक्तियों की सहायता और दूसरा है संक्रामक रोगों और आपदाओं से रक्षा। उपयुक्त मत के में मतभेद होते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य के कार्यों में वृद्धि समाज के हित में नहीं है और राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में भी अपने चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इस संबंध में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए भी फ्रीमैन कहता है: वही सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को वे कार्य करने देती है जो कहना चाहते हैं। एक अन्य व्यक्तिवादी हम्बोल्ट लिखता है: राज्य के नागरिक की उन्नति से अलग रहना चाहिए और उस कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य रहना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा और विदेशी क्षेत्रों से रक्षा के लिए आवश्यक है। व्यक्तिवाद के मौलिक सिद्धांत: पहला है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। अराजकतावादियों की भांति व्यक्तिवादी भी राज्य को बुराई मानते हैं, किंतु वो मानव दुष्प्रवृत्तियों से रक्षा करने हेतु राज्य को आवश्यक मानते हैं, इसलिए वे राज्य को एक आवश्यक बुराई कहते हैं। फ्रीमैन के शब्दों में, किसी भी रूप में राज्य का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श राज्य वह है अवस्था है जिसमें सरकार बिल्कुल न हो। राज्य का अस्तित्व उसी भांति आवश्यक है जिस प्रकार युद्ध एक विकार होते हुए भी आवश्यक है अथवा रोगग्रस्त होने की स्थिति में व्यक्ति को औषधि का सेवन करना होता है। दूसरा, व्यक्तिवादी राज्य की उद्देश्य पूर्ति का साधन मानते हैं। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक साध्य है और साधन है व्यक्ति के उचित विकास प्राप्त होना। उनके अनुसार मानव जीवन राज्य का परिणाम नहीं, वरन राज्य की स्थापना मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। स्पेंसर: राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है। तीसरा, व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष है। व्यक्तिवादी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह प्राकृतिक कर्तव्य है कि वह अपना व्यक्तिगत कार्य में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करे। व्यक्तिवादी राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन पर एकदम न्यूनतम हद तक सीमित रखने पर सहमत है। उनका कहना है कि उद्योग धंधे और व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ राज्य के द्वारा स्वतंत्र प्रतियोगिता समझौते की शर्त और बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत के द्वारा मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए। चौथा, व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य समर्पित करने के पक्ष में है। उनका विचार है कि अधिकाधिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की रक्षा नहीं बल्कि लोप होता है और उनके अनुसार राज्य केवल प्रतिबंधों को हटाना हो। व्यक्तिगत सुख प्राप्ति व्यक्तिगत वस्तु है जिसकी प्राप्ति व्यक्तिगत रूप से ही मनुष्य कर सकता है, इसलिए राज्य के सकारात्मक कार्यों से भी मानव का कल्याण संभव नहीं हो सकता है और न ही उससे मानव की तुष्टि हुई है। इसे व्यक्तिवाद का आदर्श एक पुलिस राज्य है, जन कल्याणकारी राज्य नहीं। व्यक्तिवाद का समर्थन: व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वोत्तम दर्शन है। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस विचारधारा का समर्थन अनेक दृष्टि से किया है। निम्न तर्क है: पहला, नैतिक तर्क।